نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. کل الحمدللہ ہم نے نعمتوں کے احساس کی بات کی تھی، تو آپ لوگوں نے کچھ نعمتوں کو گنا، کچھ آپ نے جانا کہ نعمتیں کون سی ہیں جو آپ کو ملی نہیں ہیں، ہم کس طرح سے نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں. خاص طور پہ افطار کے وقت میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے سارے کھانے ہیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں، اور شاید شعور کے ساتھ ایک بار بھی شکر ادا نہیں کرتے. ایک وہ وقت بھی تھا، عبد الرحمن بن عوف ایک مالدار صحابی ہیں، اور اتنا ان کو خوف رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا تھا، تو شام کے وقت کھانا جب ان کے سامنے آیا تو ان کو بے اختیار مسلمانوں کا جو فقر و فاقہ تھا وہ یاد آ گیا. فرمانے لگے، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھا، وہ شہید ہوئے تو کفن میں صرف ایک چادر تھی، جس سے سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن اب دنیا ہمارے لیے اتنی کشادہ ہو گئی ہے اور ہمیں اس قدر دنیاوی نعمتیں مل گئی ہیں کہ مجھے ڈر ہے شاید ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ ہمیں مل جائے. یہ تو نہیں کہ دنیا میں ہی ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دے، دنیا میں ہی ہمیں نہ نپٹا دے. اس کے بعد آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور وہ کھانا جو تھا وہ کھا بھی نہیں سکے، اس قدر رقت طاری ہو گئی تھی. کیا ہمیں بھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اللہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دینا، کہ آخرت میں ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو. اس چیز کو محسوس کرنے کی بات ہے. یہ تو ایسے جلیل القدر صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف، جن کے بارے میں تو دنیا میں بشارت مل گئی تھی کہ یہ جنتی ہیں. جب ان کو بشارت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، کیونکہ یہ ان صحابیوں میں سے ہیں جو بہت، ایک تو شروع کے زمانے میں اسلام لے آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام لائے تھے، اور ایسے صحابی ہیں کہ جب ہجرت ہوئی، ہجرت بھی انہوں نے کی، تو جب ہجرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا، تو جو انصاری ان کے بھائی تھے انہوں نے ان کو آفر کیا کہ آپ میرے باغ میں سے جو باغ پسند ہے وہ لے لیں، میں اتنا مالدار ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، تو وہ میں آپ کے نام لگا دیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اہل اور آپ کے مال میں برکت دے، آپ مجھے بس بازار کا راستہ بتا دیں، میں وہاں پہ محنت کر کے کماؤں گا. اور انہوں نے پھر تجارت شروع کی تھی، اور یہ اتنے مالدار تھے کہ کئی دفعہ انہوں نے صدقے میں خوب مال لوٹایا. اللہ کے راستے میں جب بھی ضرورت پڑی یہ حاضر ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ دنیا مجھ پہ ایسے فریفتہ ہے کہ میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے بھی سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے. دیکھیں، پھر بھی اس کے باوجود غزوہ احد میں بھی حصہ لیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور جب دوسرے مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے تھے اس وقت یہ چٹان کی طرح جمے رہے تھے، اور اسی جنگ میں ان کے اوپر 20 سے زیادہ گہرے زخم آئے تھے، اور بعض زخم تو اتنے گہرے تھے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو جاتا تھا. تو جان سے بھی انہوں نے اور مال سے بھی جہاد کیا تھا، اور یہ سوچیں کہ اتنا مال ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں نکلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے لیے सबसे मुश्किल काम होता है दीन के लिए वक्त निकालने में क्या होता है? वो ये कि हम अपने काम धंधे कैसे छोड़ें, दुनिया की मसरूफियात, और जिसके पास जितना माल ज़्यादा होता है वो कहता है मैं उतना ही मसरूफ़ हूँ, क्योंकि तिजारत के मशगले, काम कारोबार, पैसे के झंझट, कमाना फिर समेटना फिर और री इन्वेस्ट करना, जिसके पास जितना है वो उतना ही मसरूफ़ है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए सदका करने का जब ऐलान किया तो ऐलान सुनते ही जल्दी से अपने घर गए, वापस आए तो घर का आधा जो माल था वो लाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि क्या छोड़ के आए हो घर वालों के लिए, तो फरमाने लगे 4,000 दीनार थे घर में, 2 आपकी खिदमत में ले आया हूँ और 2 घर वालों के लिए। आपने सुन के फरमाया जो तूने अल्लाह के रास्ते में पेश किए इन्हें अल्लाह कबूल करे, और जो अहलो अयाल के लिए बाकी रखे इनमें बरकत अता फरमाए। तो वाकई इनको इतनी बरकत मिली थी कि माल इतना था इनके पास, जब फौत भी हुए इतना कुछ छोड़ के फौत हुए कि यानी घर वालों के लिए तो सब कोई करता ही है, मगर इन्होंने वसीयत की थी कि बदर के जो बदरी सहाबी हैं उनके लिए भी वसीयत की थी कि उनको भी मेरे माल में से इतना इतना हिस्सा दिया जाए, और वो 100 सहाबा थे तो 400 दीनार हर एक को दिए जाए, और उम्महातुल मोमिनीन को भी मेरी जायदाद में से दिया जाए, और वसीयत के मुताबिक माल तकसीम करने के बावजूद इतना माल था कि विरसे में 1,000 ऊंट, 400 घोड़े, 3,000 बकरियां और 4 बेवाएं थी, उनमें से हर एक के हिस्से में 80-80 हज़ार दीनार आए थे, और वुरसा में सोना और चांदी भी तकसीम हुआ था, डलियां थी बड़ी बड़ी सोने और चांदी की जिनको कुल्हाड़ियों से काटना पड़ा था, काटने वालों के हाथ जख्मी हो गए थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था ना। तो देखें जो अल्लाह के रास्ते में देता है उसकी कमी नहीं होती, इन्होंने हर जगह अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। एक दफा मुसलमानों ने जब सदका व खैरात किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, तो उनका ये अंदाज़ देख के जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बहुत सदका किया तो हज़रत उमर फरमाने लगे यूँ लगता है आज अब्दुर्रहमान बिन औफ ने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं रहने दिया, सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाके ढेर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब्दुर्रहमान क्या तुम कुछ माल घर वालों के लिए भी छोड़ आए हो? ये तबूक का वाक़या है क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना। फरमाने लगे हाँ या रसूल अल्लाह, जितना आज आपकी खिदमत में पेश किया इससे ज़्यादा और इससे बेहतर घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कितना? अर्ज़ की क्या अल्लाह ने उसके रास्ते में खर्च करने पर रिज़्क़ की फरावानी, खैर व बरकत और अजर का वादा नहीं किया हुआ? तो वो छोड़ आया हूँ उनके लिए। सुभान अल्लाह। अब देखिए इतना देने के बावजूद कितनी बरकत है। जब इन्होंने एक दफ़ा इनका काफ़िला आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी थी, तो काफ़िला जब भी आता था लोगों को बहुत कुछ उसमें से दिया करते थे, तो एक दफ़ा काफ़िला आया 700 ऊंट थे उसमें और इतना तजारती माल था, जब वो काफ़िला मदीना में दाखिल हुआ सारी ऊँटनियाँ इतनी लदी हुई थी साजो सामान से कि ज़मीन थरथराने लगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा था कि आज ये थरथराहट कैसी है? आपको बताया गया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का 700 ऊँटियों पे मुश्तमिल तिजारती काफ़िला आ रहा है। आप सोचे 700 ऊँटनियों कोई कम नहीं होती, 100 ही खड़े कर दें ऊँट तो कितने हैं। तो ये सुन सुन के हज़रत आयशा बहुत खुश हुई थी और अल्लाह ताला से दुआ की कि इलाही जो कुछ तूने इनको दिया है इसमें बरकत दे और आख़रत में इससे बढ़ के अजर व सवाब दे। फिर फरमाने लगी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में खुशी से उछलते हुए दाखिल होंगे। इससे पहले कि ये तिजारती काफिला पड़ाव करता एक शख्स ने जाके حضرت عائشہ کی یہ بات عبد الرحمن بن عوف کو بتا دی. جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. دوڑتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے, عرض کی, اماں جان, کہ آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات خود سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے؟ فرمایا ہاں. یہ سن کے کچھ نہ پوچھے ان کی خوشی کا کیا عالم تھا. فرمانے لگے, اماں گواہ رہنا, میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا سارا تجارتی قافلہ ماں تمام ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. اچھا, آج کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری بخشش ہو گئی یا مجھے جنت کی بشارت مل گئی, اس کے بعد تو وہ کچھ کرے گا ہی نہیں. اور ان کا حال یہ تھا کہ جب جنت کی بشارت ملی تو اتنے حوصلے بلند ہو گئے کہ اب تو اور بھی زیادہ اللہ کے راستے میں دینے لگے. کبھی کبھی 40,000 دینار تک اللہ کے راستے میں صرف کر دیے انہوں نے. تو یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں کہ ایسے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں سارا کچھ دنیا میں ہی نہ مل جائے, یہ نہ ہو کہ آخرت میں ہمارے لیے پھر کچھ بھی نہ ہو. ہمیں شاید یہ خیال کبھی بھی نہیں آتا کہ پتہ نہیں آخرت میں بھی ہمارے لیے کچھ ہے یا نہیں. اور اتنی نعمتیں پا کے بھی حال یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ رمضان میں ہی ہمارے ہاں چیزیں ضائع ہوتی ہیں. آپ خود دیکھیں جتنا ہم کھانا بناتے ہیں, ظاہر ہے اگلے دن پھر روزہ ہوتا ہے سب کا, پھر وہ کھانا پھکتا ہے. تو کبھی سوچا کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے, ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہم شکر ادا کریں. اور ایک حدیث جو ہمیشہ مجھے بہت ڈراتی ہے کہ عورتیں جہنم میں کثرت سے ہوں گی, زیادہ تعداد جو ہوگی نا میجورٹی وہ عورتوں کی ہوگی جہنم میں. تو اس کی وجہ ان کی ناشکری بھی ہے اور یہ بھی کہ ان کے دین میں بھی کمی رہ جاتی ہے, دین بھی ان کا کم ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں جو ہر مہینے آپ کے ساتھ آٹھ سات آٹھ دن جب ایبسنٹ ہو گئے آپ نماز سے روزے سے, تو نماز تو خیر میک اپ نہیں کرنی, لیکن اتنے دن تو اللہ کی یاد سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں نا. آپ میں سے بعض بہنیں کہیں گی تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے, ہم نے تو نہیں یہ کیا. بے شک قصور تو نہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ ان دنوں میں کیا ہم اللہ تعالیٰ کو وافر کثرت سے یاد کرتے ہیں. اتنے دنوں کی تو ایبسنس ہو گئی نا, صرف نماز سے ہی چھٹی تھی. روزہ تو خیر ہم ہر وقت تو نہیں رمضان ہوتا, لیکن باقی 11 مہینے آپ خود سوچ لیں کہ یہ 7-7 دن ملاتے جائیں کتنے دن بن گئے. 12 کو 7 سے کریں 84, اتنے دن تو ہم, اور اس سے زیادہ جو کسی کے ہیں 8 دن لگیں اگر, تو تقریباً 100 دن آپ کے تو بغیر کسی اللہ کے ذکر کے, نماز کے, قرآن کے, ہر چیز سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں نا. تو وہ تو کمی رہ گئی, ہر سال میں اتنی کمی رہ جاتی ہے. تو ان میں دین کی کمی کی وجہ سے بھی جہنم میں ہوں گی, لے کے ہی کچھ نہیں گئے. جو ہم کام کر سکتے ہیں ہم ان سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ اب بس ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤ. اب چونکہ ہمارے ظاہر ہے ناپاکی کے دن ہیں تو اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت تو اور بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز وغیرہ تو ہو نہیں رہی, اب باقی تو کام ہم کریں, ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. رمضان جیسے مہینے میں جو اتنی برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں آپ 7-8 دن چھوڑ کے بالکل بیٹھ جائیں, اب باقی سارے کام ہو رہے ہیں. اچھا, ہمیں شاید اب چھٹی مل گئی, جیسے بالکل نہیں ہو جاتی فراغت, بالکل فراغت پا لیتے ہیں ہر طرح کے ذکر سے, دعاؤں سے, ذکر سے, تسبیحات سے. تسبیح پکڑنے کو بھی گناہ سمجھ لیتے ہیں. تو یہ چھٹی نہیں ہے. اب ان دنوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں وہ جاننا ضروری ہے, رمضان ہو یا غیر رمضان. ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا, ورنہ یہ کمی ہوتے ہوتے سوچیں ساری زندگی کا ملا لیں تو کہاں جا کے پہنچ جائے گی. تو یہ بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میجورٹی عورتوں کی ہوگی جہنم میں؟ कुछ ना कुछ तो वो ऐसे काम करती है ना कि वो ज्यादा होंगी, मर्दों से भी ज्यादा होंगी। आप देखिए, अगर सहाबियात का मामूल, तो उनको इबादत का इतना शौक था। हजरत हमना बिन जहश जो थी, इनका मामूल ये था कि बराबर नमाज में लगी रहती थी। जब थक जाती थी ना, तो मस्जिद में एक सतून से, एक पिलर के साथ इन्होंने एक रस्सी बांधी हुई थी, उससे लटक जाती थी, यानी उसको पकड़ के फिर खड़ी रहती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्सी देखी तो पूछा कि ये क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि ये उन्होंने रस्सी बांधी हुई है, जब नमाज में थक जाती तो इसका सहारा लेके लटक जाती, खड़ी हो जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतनी नमाज पढ़ो जितनी ताकत है, अगर थक जाओगे तो बैठ जाना। तुम इबादत करते करते थक जाओगे, अल्लाह देते नहीं थकता। तो रस्सी खुलवा दी कि इतनी मुशक्कत ना करो। इतनी ज्यादा मुशक्कत करती थी वो, इतना शौक था उनको इबादत का, इतनी आगे बढ़ना चाहती थी। हमारा हाल ये है कि 7 दिन अगर हम एब्सेंट रहे हैं, तो उसके बाद बाकी 3-4 दिन जब वापस आते हैं हम बाकी की हालत में, 3-4 दिन तो रूटीन में आने में ही लग जाते हैं, क्योंकि वो सारा तहज्जुद का टाइम भी गया। अब वो उस वक्त जो उठते थे वो आदत भी खत्म हो गई, अब नमाजें भी भूल जाती हैं, अजान हो रही है और याद ही नहीं किया, ओहो नमाज तो पढ़नी है अब मैंने, अब कुरान की तिलावत के लिए भी दोबारा रूटीन बनानी पड़ी। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि हमारी ये जो कमी रह रही है, इसको हमने कैसे पूरा करना है। कमी है इस, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम माफ हो गए हर चीज से, जाहिर है माफी तो नहीं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए इंशाल्लाह जो लोग नहीं भी पढ़ सकते, दुआएं जरूर करें। दुआ जो है वो इबादत का मगज है, तो दुआ सारी इबादत का समझ लें कि ब्रेन है, इतनी बड़ी चीज है, इट्सेल्फ एक इबादत है। चलो कुछ नहीं कर सकते, दुआएं ही करते जाओ। तो जरूर आप इस चीज का एहतमाम रखें। कुछ और मैं आपको सहाबियात की बात बताना चाहती हूँ, उनके अखलाक से भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। एक उनके अंदर ये बात बहुत अच्छी थी कि जैसे हम लोग बात बात पे कसम खा लेते हैं ना, और हमें ये नहीं समझ आती कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सहाबियात बहुत कम कसम खाती थी, और जिस बात पे कसम खा लेती फिर उसको पूरा करती थी। एक दफ़ा हज़रत आयशा जो थी, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से नाराज़ हो गई, कसम खा ली अपने भांजे से ना, नाराज़ हो के कि मैंने अब इनसे बात नहीं करनी। लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांग ली और दूसरे सहाबा ने भी सिफारिश की, तो रो के कहने लगी, मैंने तो नज़र मान ली है, कसम खा ली है यानी, और इसका मामला बड़ा सख्त है। तो फिर सबके सिफारिश पे इन्होंने उनको माफ़ भी किया और कसम का कफारा अदा किया। 40 गुलाम आज़ाद किए थे, कफारा अदा किया, और फिर बातचीत शुरू की। यानी इतनी एहतियात रखती थी, और कभी नहीं किसी के सामने मांगती, नहीं थे वो लोग, मांगना अच्छा नहीं समझते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। बाज तो माँ बाप से मांगते हुए भी शर्म खाते थे कि माँ बाप से भी भरी महफिल में सवाल किया जाए। हजरत फातिमा का नहीं वाकया आपने सुना, ये जब घर के काम काज से बहुत थक जाती थी, तो हजरत अली ने फरमाया कि अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से गुलाम लौंडियाँ आ गए, आप जाके कुछ मांग लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो वापस आ गई शर्म के मारे कि मैं कैसे मांगू। यानी ये उनका तकवा का हाल था। और इंतकाम लेना, जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि किसी के अगर मौका मिल गया, किसी से दुश्मनी है, तो फौरन इंतकाम लेने पे खड़े हो जाते। सहाबियात में इतना खुदा का खौफ था, बुग्ज रखना, इंतकाम लेना, ये वो नहीं करती थी। हज़रत आयशा पे जब तोहमत लगी थी, तो उनकी सौकन थी ना ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, तो बड़ा उनके पास मौका था कि वो इंतकाम में कुछ बोलती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान भरती। इनसे पूछा गया तो उन्होंने आपके खिलाफ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और यही कहा, मुझे तो उनमें भलाई के सिवा कुछ नहीं नज़र आता, भलाई ही नज़र आती है। अब सौकन होते हुए सोचें कि ये बात उन्होंने कही। तो उनके किरदार से, अखलाक से हमें सीखना चाहिए। फिर इसी तरह राजदारी रखना, राज जो होते हैं, सहाबियात का सीना जो था उनमें बहुत सारे राज होते थे, कभी उसको अफशा नहीं करती थी, जो कि औरतों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आप देखें कि राज रखना औरत के लिए ही वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा के कान में बात की थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो रही थी, तो उस वक़्त आपने ये वाक़या सुना होगा कि एक दफ़ा वो रोई और उसके बाद हंसती। तो बाद में उम्महात ने पूछा भी कि क्या वजह हुई, फरमाने लगी आपकी ज़िंदगी में मैं आपका राज फाश नहीं कर सकती। तो आप ये देखें कि उनकी अखलाक कैसे थे। सहाबा कराम भी ऐसे ही थे, वो भी ना कभी किसी के आगे हाथ फैलाते थे, उनके भी अखलाक ऐसे ही हुआ करते थे, कभी नहीं किसी के आगे हाथ फैलाया था, ना किसी का राज फाश करते थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज उनको बताए थे उनको अपने सीने में रखा। हज़रत हुज़ैफ़ा के पास मुनाफिकीन की लिस्ट थी, पता था कि कौन कौन मुनाफिक है, कभी नहीं किसी को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है। हज़रत अनस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी कितना अरसा रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनको कोई बात बताई, अपने घर में गए तो वालदा ने पूछा, फरमाने लगे नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है मैं नहीं बताऊंगा, एक बच्चे हैं, और हमें किसी का राज पता चल जाए तो हम क्या करते हैं। अब बस पता जो चल गया हमें, हमारे हाथ आ गया, तो बस अब हमें ऐसे लगता है कि हम इसको हर तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसके राज उछालते हैं लोगों में, भरी महफिलों में बैठ के। तो ये सहाबा कराम का, सहाबियात का तरीका नहीं हुआ करता था, तो एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करने वाले हुआ करते थे, और बल्कि एक दूसरे की अच्छी बातें लोगों को बताते थे, बुराइयों के ऊपर पर्दे डालते थे। क्योंकि जिसने दूसरे की बात के ऊपर पर्दा डाला, किसी के राज को फाश नहीं किया, उसके राज पे पर्दा डाला, अल्लाह ताला उसकी ऐबों पे पर्दा डालेंगे कयामत के दिन। तो वो नहीं बताया करते थे। और औरतों में, हम औरतों में ये बात बहुत कॉमन होती है कि पेट में बात रखना, कहीं ना कहीं तो हमने बतानी होती है, और नहीं कहीं है तो जाके अपने मेके में ही बता देंगे, किसी ना किसी के सामने ज़रूर बताना है। तो इन चीज़ों को हमें सहाबे कराम और सहाबियात की ज़िंदगी से देखना है और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है इंशाअल्लाह ताला, कि हमारे अखलाक भी ऐसे हो जाएं, सुनहरी अखलाक। इसमें मेरा तो ख्याल है कि सबसे ज़्यादा ज़ुबान का ये अमल दखल है ना, ज़ुबान अगर सही होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़ुबान से ही होने वाले ये सारे राज रखना या कसम खाने वाली बात है, या बहुत बातें करना, या गीबत बदगोई, नुक्ताचीनी लोगों पे क्रिटिसाइज़ करना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सहाबा तो बहुत एहतियात किया करते थे। एक दफ़ा हज़रत हारिस जो थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कोई ऐसा अमल बताएं जिसमें लाजिम पकड़ लूँ, हमेशा किया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की तरफ इशारा करके फरमाया इसको काबू में रखो। वो पहले ही बड़े कम गो थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है काबू में रखना, लेकिन उन्हीं का बयान है कि जब मैंने इस पे अमल करना शुरू किया तो ये बड़ा मुश्किल था। एक दफ़ा इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर को नसीहतें की थी, उनमें से एक नसीहत ये थी कि किसी को बुरा भला ना कहना। वो फरमाते हैं इसके बाद मैंने इंसान तो इंसान कहते, मैंने कभी किसी ऊंट को बकरी को भी नहीं बुरे भले अल्फाज बुरा भला का, ना शाइस्ता ना मुलायम अल्फाज कभी नहीं इस्तेमाल किए। अगर उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती थी, इतनी उनको नदामत होती थी इसके ऊपर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक दफ़ा हज़रत रबी असलमी को कोई सख्त कलिमा कह दिया था, इस पर इतनी उनको शर्मिंदगी हुई कि हज़रत रबी से कहा कि तुम भी मुझे ऐसी बात कह दो ताकि बदला यहीं पर हो जाए। उन्होंने कहा मैं तो नहीं कहता। बोले तो फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत करूंगा। उन्होंने का कर दो बेशक, लेकिन मैं नहीं आपको कहूँगा। मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गया। आपने रबी से कहा तुमने बहुत अच्छा किया कि इसको कुछ नहीं कहा। लेकिन अबू बकर के लिए इस्तग़फ़ार करो। उन्होंने उनके लिए दुआए मग़फ़रत मांगी कि इन्होंने मुझे जो कह दिया है अल्लाह इसके ऊपर इनको माफ़ कर देना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोते हुए वापस आए। सोचिए, मैं सोचती हूँ इतना उनका तकवा था, सुभान अल्लाह, कि हम यहाँ पे ही हमारा मामला, यहाँ पे बदला ले लो भाई, वहां पे जाके नहीं हम दे सकते, वहां पे जाके हम कहाँ देंगे, यहीं पे तुम साफ कर लो मामला। तो इतनी वो जुबान की एहतियात किया करते थे, लोगों की बुराइयों को छुपाया करते थे, नेकियों को हाईलाइट किया करते थे, लोगों के ऐबों पे पर्दापोशी किया करते थे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस है ना कि आपने फरमाया जिसने किसी के ऐब पे पर्दा डाला वो उस आदमी की तरह है जिसने जिंदा गाड़ी भी लड़की को निकाल दिया, उसको बचा लिया। सुभान अल्लाह। तो उनके अखलाक से हम सीखें, खास तौर पे हम औरतों में जो इस तरह की जुबान की आफात है उनसे हम लोग बचें, क्योंकि रोज़ा भी रख लेते हैं लेकिन ज़ुबान की आफतों से नहीं बच पाते। अगर एक बात को समझ लेना, हम ये चूंकि अल्लाह ताला से क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो वो चीज़ें जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला को तीन बातें नापसंद है, ये बुखारी की हदीस है। एक तो है बेफ़ायदा बोले जाना, बेकार, कीलो काल, ऐसे ही बस, उसने ये कहा, इसने वो कहा, वो हुआ, वो हुआ, यानी घंटों ये लगे हुए बातें करने में और फायदा कुछ भी नहीं इन द एंड, यूं ही गपबाजी जिसको कहते हैं, बेजा बातें। और दूसरी, रुपया तबाह करना, पैसे को बर्बाद करना, बेकार चीजों में माल लगा देना। और हम कहते हैं तो फिर क्या हुआ, मेरे पैसे हैं, मैं जहां मर्जी खर्च करूं, लेकिन अल्लाह ताला को ये नापसंद है। खास तौर पे हम औरतें हैं, हम कहते हैं सस्ता मिल रहा है तो चलो उठा लिया मैंने, अब जमा करते जाएंगे उसको, करते जाएंगे और बेफायदा रुपया तबाह करते जाएंगे। तीसरे, बहुत मांगना, ये तीन चीजें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जिसने अल्लाह का प्यारा बनना है इन तीन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी से कभी मांग ही नहीं सकते, मगर आपको पता है ना कि ये कसरत से मांगना, हाथ फैलाए रखना, तो ये एक झिझक ही होती है, और जब ये उतर जाती है तो फिर इंसान बस हर एक के आगे हाथ फैला देता है। तो इन तीन चीज़ों को छोड़ना होगा। अल्लाह ताला हमारे अखलाक बेहतरीन करते हैं। अच्छा जी, आज का जिक्र है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अलअज़ीम। इंशाअल्लाह ताला ये तस्बीह आप 100 दफ़ा इसको करिए तो इंशाअल्लाह समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत से। उम्मीद है कि आपने कुरान पाक की तिलावत की होगी। अगर मैं कभी भूल भी जाऊँ तो आपने बहर हाल एक पारा ज़रूर पढ़ना है। तो अब आपका चौथा पारा हो चुका होगा, आज पाँचवा पारा पढ़ें, और आपने माशाल्लाह सूरह आले इमरान भी मुकम्मल कर ली होगी। ये सूरत और सूरह बकरा, सुभान अल्लाह, ये तो ऐसी सूरतें हैं कि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान और कुरान पढ़ने वालों को क़यामत के दिन बुलवाया जाएगा, आगे आगे सूरह बकरा और सूरह आले इमरान होंगी, बादल की तरह या साए की तरह या साएबान की तरह या पर खोले हुए परिंदों के झुरमट की तरह, ये दोनों सिफारिश करेंगी इंसान के हक में। तो इन दोनों सूरतों को वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए, वैसे भी साया चाहिए ना उस दिन, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी हैं। वैसे भी कुरान पढ़ने वाला जब कब्र से उठेगा तो देखेगा एक नौजवान नौरानी चेहरे वाला उसके पास खड़ा हुआ है, कहता है मुझे पहचानते हो? ये कहेगा नहीं। वो जवाब देगा मैं कुरान हूँ जिसने तुझे दिन में भूखा रखा, रात को तुझे बिस्तर से दूर रखा। जब आप कुरान सुनते हैं तरावी में तो ये कुरान सिफारिश करेगा, कहेगा हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे है लेकिन आज सारी तिजारतें तेरे पीछे हैं। सुभान अल्लाह। आपने मिसवाक की सुन्नत को अपनाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब तहज्जुद पढ़ते थे तो हर 2 रकत के बाद मिसवाक किया करते थे। तो ज़रूर इस सुन्नत को अपनाइए। कल मैंने आपको इशराक का बताया था, पर एक बात आपको नोट और भी करनी है कि ऐसे ही एक हज और उमरे का नहीं अजर मिल जाएगा, आप जब फजर पढ़ के वहीं बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहें, जैसे अब हम फजर पढ़ के फिर बैठे हैं अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो इसके बाद फिर आप जब सनराइज के तकरीबन यानी समझ लें 15-20 मिनट बाद सनराइज का टाइम देख लें आप उसमें अपने कैलेंडर पे, उसके बाद फिर आप इंशाअल्लाह ताला 2 रकत पढ़ लें, ठीक है? सदक़े के लिए आपने बॉक्स बना लिया, सदका दें, सदका के लिए कोशिश करें। आपको मालूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा कयामत के करीब कि इंसान अपना सदका लेके घूमता फिरेगा, उसको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सदका लेने वाला हो, बल्कि जिसके पास भी जाएगा वो कहेगा कल अगर आ जाते और ले आते तो शायद मैं ले लेता, आज तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक ऐसी नेकी है, इतने बड़े अजर वाला काम है जो कयामत से पहले पहले दुनिया से उठ जाएगा, फिर कोई भी सदका नहीं कर सकेगा। वजू पे हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर उसके बाद आपने एक चुल्लू लेकर नाक और मुंह में पानी, पानी पहले मुंह में डालना है फिर नाक पे चढ़ाना है, नाक ब्लो करनी है उसके बाद पानी फेंकना है मुंह वाला, और उसके बाद अपने चेहरे को लेकिन पूरा चेहरा कानों की लौ तक साइड्स पे और ऊपर माथे से ऊपर जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं वहाँ से लेके नीचे थोड़ी के कवर करते हुए, चिन कवर करते हुए वहाँ तक आपने मुंह को धोना है। और ये याद रखिएगा कि जब आप वजू कर रहे होते हैं ड्यूरिंग वजू के दौराने वजू की कोई दुआ नहीं है, जैसे बहुत लोगों ने बनाया हुआ कि इस वक्त ये पढ़नी है, इस वक्त सूरह कौसर पढ़नी है, इस वक्त ये, वो कोई दुआ नहीं है। एंड की जो दुआ है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दौराने वजू नहीं कोई दुआ। हर नमाज के लिए अगर आप नया वजू करेंगे ना तो ये भी बड़े सवाब का काम है। शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 वक्त की नमाज के साथ 5 वक्त का वजू करना फर्ज था, बाद में ये फर्जियत खत्म हो गई, मगर सहाबा कराम इसके फिर भी पाबंद रहे, वो फिर भी हर नमाज के लिए नया वजू किया करते थे। तो एक हदीस में भी आता है कि वजू पे वजू करने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं। आज से इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करिए कि नमाज को भी अव्वल वक्त में अदा कीजिए। नमाज को अव्वल वक्त में अदा करने से क्या फ़ायदा होता है कि नमाज के भी दर्जे हैं ना, किस वक्त की नमाज के कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जो अव्वल वक्त की नमाज है उसका अजर सबसे ज़्यादा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ताला को जो सबसे पसंदीदा काम है वो क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। तो नमाज को वक्त पे पढ़ना, अब आप अगर देर कर करके पढ़ रहे हैं, अफ्तारियां बनाने में लगे हुए, उस वक्त आप इतने बिजी हुए हैं कि नमाज का टाइम लेट हो रहा है, तो जाहिर है बी ग्रेड की सी ग्रेड की आपकी नमाज हुई, डी ग्रेड की हो गई, उसे भी लेट कर दी। तो लेकिन अगर आप अव्वल वक्त में पढ़ने वाले हैं तो इंशाअल्लाह ताला ए ग्रेड वाली नमाज है। और देर से अगर असर की नमाज खास तौर पे अगर देर से पढ़ें तो वो किसकी नमाज हो जाती है, मुनाफिकीन की। तो इसलिए इस चीज की एहतमाम करें, इस चीज की कोशिश करें कि नमाज के वक्त को लेट ना किया जाए। खास तौर पे अगर हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में ये आदत बना लेंगे ना तो आगे हमारे लिए आसानी होगी। सहाबा कराम का हाल ये था कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने कबायर सहाबा को, बड़े बड़े सहाबा कराम को देखा मगरिब के वक्त मस्जिद के सतूनों की तरफ नमाज के लिए दौड़ते थे कि हम जल्दी जल्दी नमाज के लिए पहुंचे। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए नमाज अव्वल वक्त में हो, और हर नमाज के लिए कोशिश कीजिए कि वजू फ्रेश ही करें इंशाअल्लाह ताला। आपको शायद अगर आपके इल्म में ना हो तो मगरिब से पहले के भी दो नफल होते हैं, यानी मगरिब की अज़ान जो ही हुई उसके बाद आप नफल अदा कर लें, दो नफल अदा कर लें। जब तक घर वाले सारे वज़ू करके आएँ और जमात के लिए खड़े हों, उतनी देर में आप पहले से, इफ्तारी से पहले से आप वज़ू करके रखें, आप दो नफल पढ़ लिया करें। सहाबा कराम उस वक़्त तक नफल पढ़ते थे ये, जब तक आप इमामत के लिए नहीं आ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नहीं ये पढ़े ताकि उम्मत के ऊपर मुश्किल ना हो जाए, लेकिन इनकी ताकीद की। अल्लाह ताला हम सब के अखलाक भी बेहतरीन करे और अल्लाह ताला हमारे लिए इबादात को भी आसान फरमा दे। एक हदीस आखिर में आपके सामने रखना चाहूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग कभी निजात से महरूम नहीं होंगे जब तक वो अपनी बुराइयों की तावीलें कर करके अपने नफ्स को बुराइयों पर मुतमईन न करते रहें। समझ आई बात? यानी निजात लोगों को ज़रूर मिल जाएगी जब तक कि वो बहाने ना करते रहें, बहाने कर कर के, एक्सक्यूज़ेस कर कर के, ख़ुद को जस्टिफिकेशंस दे दे के इंसान अपने आप को मुतमईन करता रहता है ना, कोई बात नहीं, अगर मैंने ये बुराई भी कर ली तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देते जाना, तो ऐसा इंसान फिर निजात से महरूम रह जाता है, उसको निजात नहीं मिलती। अगर हमें वाकई इस महीने में निजात हासिल करनी है ना, खुद को एक्सक्यूज़ेस देना बंद करने, खुद पे सबसे ज़्यादा हमने सख्ती करनी है, जितनी हम लोगों पे करते हैं ना, लोगों की तो छोटी छोटी बातों को ही पकड़ लेते हैं, खुदा रहा उतनी अपनी बातों को पकड़ा करें। अपनी तो बड़ी बड़ी भी चीज़ें नहीं नज़र आती, दूसरों की छोटी छोटी गलतियां भी बहुत हमें बड़ी नज़र आती हैं, इसलिए हम हर वक्त दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारी अपनी गलतियां देखने वाला बना दे। आज की दुआ है आपके लिए, बहुत प्यारी दुआ है, मसनून दुआओं में से है। अल्लाहुम्मा रहमतक अरजू, ए अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, अल्लाह मैं तेरी से रहमत मांगती हूँ। फ़ला तकिलनी इला नफसी तरफत आइन, अल्लाह एक लम्हे के लिए भी, एक पलक झपकने तक के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। शैतान तो बंद हो गए, नफ्स तो हमारा फिर भी खुला हुआ ना, इसको छूट मिली हुई है, तो अल्लाह एक लम्हे के लिए भी मुझे इसके हवाले ना करना, क्योंकि जो नफ्स के हवाले हो गया ना वो तो तबाह हो गया। व असलिह ली शअनी कुल्लहू, और अल्लाह मेरे सारे कामों को संवार देना। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरे अलावा तो कोई इला है ही नहीं, कोई माबूद है ही नहीं। तो रहमत भी मांग ली आपने, इसमें दूसरी चीज़ आपने ये मांग ली कि मेरे नफ्स के हवाले ना करना, और अल्लाह मेरे सारे कामों को संवार दे, सारे काम मेरे ठीक कर दे। अब देखें कितने काम होते हैं, हमें तो याद भी नहीं होता। ख़ास तौर पे मैं आपको कहूँगी कि जब आपका इफ्तार होने लगे ना, प्लीज़ उस वक़्त ये जो गरम गरम पकौड़ों और समोसों और इनकी लालच में आप चूल्हे के आगे खड़े होते ना, ये काम ना करें, बिल्कुल ना करें। ये मेरी आप सबको नसीहत है। उससे 5 मिनट, मैं तो कहूँगी 10 मिनट पहले, लेकिन चलो 10 मिनट नहीं निकलते, 5 मिनट पहले आप जहाँ पे आपका दस्तरखान है, आपकी मेज़ लगी हुई है, इफ्तार की चीज़ें रख के और बैठ जाइए और ये दुआओं की किताब ले लें। अव्वल तो उस वक्त जहन में ही, क्योंकि नहीं आता ना, अब क्या दुआ मांगनी थी, क्या मांगनी थी, अब वो एकदम इंसान पैनिक में होता है, जल्दी होती है, तो उस वक्त समझ ही नहीं आती अब क्या मांगे, तो दुआओं की किताब साथ रख ले। उस वक्त खामोशी के साथ सारे घर वाले सिर्फ दुआएं मांगे, कोई बात ना करें। हम उस वक्त चीज़ें डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलां ये पकड़ा दो, वो कर दो, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ रह गई, ये ना कीजिए, ये जुल्म करते हैं आप। तो इसलिए बेहतर है आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें ना, जरा थोड़ा 10 मिनट पहले आप उठ जाएं इफ्तारी बनाने के लिए, कौन सी क़यामत है। लेकिन इतना प्रेशियस टाइम आप गंवा दें गरम गरम खाने के पीछे, क्या फ़ायदा, बाकी टाइम गरम ही खाते हैं ना। तो कोई नहीं, लेकिन इन दुआओं का वक्त जो इतना कीमती वक्त है, इसको ना गंवाइए। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।